उद्धव भेजा माता पिता और गोपियों की स्वामी का लाभ देने के लिए, किंतु गोपियों का देहादी और भी बढ़ गई। वो गए उसे शांत करने के लिए, किंतु वो शांत नहीं, देहादी और भी बढ़ गए। जब वे मथुरा को छोड़कर के द्वारका में चले गए, मथुरा उजाड़ कर गए, वृंदावन भी उजड़ गया, गोप गोपियां ये कृष्ण की अपराधिक लीला में, अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। कृष्ण मरे नहीं, गोपियां मरी नहीं, जो माया ने किसी प्रकार से उनको अप्रकट लीला को गोलोक गोकुल में उनको उपस्थित कर दिया। पृथ्वी का उजड़ेगा कृष्ण की जितनी भी लीलाएं और उनके पक्ष थे, वो भी जंगल बन गए। वृंदावन कहाँ है, काम्यवन कहाँ है, मधुबन तापवन कहाँ है, इसकी कोई ऊपर से स्मृति ही नहीं रही। जब सब कुछ उजड़ गया और कृष्ण लीलाएं महाभारत युद्ध के अनंतर ब्रज में बहुत लीला के द्वारा कृष्ण भी अपराधिक लीला में प्रविष्ट हो गए, उनके सारे संकल्प दूर हो गए। उस समय उद्धव जी किसी प्रकार से ब्रज में आए और कुसुम सरोवर के निकट घास बन करके रह गए। पंडित महाराज जी ने देखा सारा ब्रज दूर चढ़ गया, मथुरा भी उजड़ गया। इसी प्रकार से मथुरा में आए कृष्ण के प्रपौत्र बद्रनाथ जी को साथ में ले आए। मथुरा का को फिर से बताया और बताने के बाद में बद्रनाथ को वहां का राजा बनाया। विभिन्न स्थानों के ब्राह्मणों को भी बताया, व्यापारियों को भी बताया, सब लोगों को बता करके पुनः मथुरा स्थापित की गई। उनकी इच्छा थी कि कृष्ण के लिया के समय में बुजुर्ग हुई जो वृंदावन है उसको फिर से प्रदान किया। इसलिए नंद बाबा के पुरोहित और कुलगुरु सांडिल्य ऋषि को गर्गाचार्य को चरणों में निवेदन किया बद्रनाथ जी, और उन लोगों ने उजड़ी हुई वृंदावन को फिर से बचाया। वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ बसंत जी का विग्रह प्रकट हुआ। गोवर्धन में हरदेव जी को जो गोवर्धन बताया था उनकी भी प्रतिष्ठा बद्रनाथ जी ने बनाई। कामरगन में कामेश्वर महादेव और सभी जगह जगह में पावन करो कुसुम करो इत्यादि सब नए नए तक कृष्ण की लीला की मूर्तियों को जगाने के लिए इसकी स्थापना की। चरण पहाड़ी इत्यादि में कृष्ण के चरण चिन्ह भी प्रकाशित किए। फिर से वृंदावन को उन्होंने विशेष करके वृंदावन को प्रकट करने के लिए उनकी इच्छा हुई कि अपने कुल अति देवता जो कृष्ण हैं इनकी कोई सुंदर कृष्ण जैसी मूर्ति में प्रकाश कर। उन्होंने कलाकारों को ब्राह्मण कलाकारों को आदेश दिया कृष्ण जैसी मूर्ति की प्रकाशित हो, किस प्रकार से त्रिभंग रूप में खड़े हुए कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और कैसा उनका सुंदर भक्त जिसके उनका मुखार लिंग है, उनका वस्त्र है और उनके चरण है, इसको तो ठीक से लाना होगा। उस समय उनकी दादी भी उनकी मां की था वो भी प्रकट थी। पहले जब मूर्ति बनी पृथ्वी की बड़ी सुंदर खूबसूरत, तो दादी जी ने कहा इसके चरण तो ठीक वैसे ही है, चरण पर चरण कर करके रखे हुए, किंतु उसके अन्य अंग जो है वो ठीक नहीं बने, वो ठीक नहीं बने। उसके बाद करके बच्चनाथी ने भजनाथी ने आदेश दिया ये मूर्ति रख दी जाए। सुंदर कृषि कैसी मूर्ति बनी जैसी हमारी दादी जी कह रही थी। पहली जो मूर्ति बनी वो मदन मोहन सिंह है जो वृंदावन का प्रकट हुए और वहां से जयपुर पधारे और जयपुर से जयपुर की राजकुमारी की शादी में जयपुर स्वरूप में उपहार स्वरूप में वो मदन मोहन को अपने साथ ले गए और करौली में लोग जा रहे हैं। वही गोविंद दूसरी मर्ती बड़ी खूबसूरत है। दादी जी बड़ी सुप्रसन्न से बोली इनका बस्तर था और भंसी जो धारण कर रहे हैं ये तो खूबसूरत हुआ है, इसको मैं खूब पहचान रही हूं, किंतु और अंगों को मैं नहीं पहचान रही। तो वो निराश हुए। वो मूर्ति कौन सी है? गोपीनाथ। पहले वृंदावन में नहीं 150 वर्ष तक गोविंद जी के साथ, जब गोविंद जी आए तो गोपीनाथ जी को भी यहाँ के महाराज ने उनको भी यहाँ लाया और वो गोपीनाथ जी अभी भी जयपुर में ही वहां पर गिरा है। यहाँ पर शाम को हम लोगों का प्रवचन है। अब उन्होंने इस तीसरी मूर्ति के लिए आदेश दिया। तीसरी मूर्ति बड़ी खूबसूरत देखकर के उनकी दादी जी उछल पड़े और उछल करके उनको अलिंगन पास में पत्थर कर दिया। आप बड़ी खूब इनका मुखार भी तो मैं पहचान लूंगे, ये तो रूप कृष्ण है हमारे खिलाफ ही हो रहा है। और वही मूर्ति हुई गोविंद जी। ये तीनों मूर्तियों को बजरनाथ जी ने वृंदावन में ही पकड़ा, तीनों वहीं गए बहुत दिनों तक वहां पर 150 वर्ष। इसके बाद में बजरनाथ जी के जाने के बाद में वो फिर कुछ ऐसा समय हुआ जौनों का अत्याचार हुआ, काल जमनी तैयारी की जाए और उनके पुजारी लोग छोड़ करके इधर उधर होते और खाला वो मूर्तियां भी जमीन के करने लग गई और जगत उससे अंतरित हो गई। बहुत दिनों का समय है। इसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ये पधारे जगत में। कृष्ण की लीला के समय में उनकी तीन वांछाएं पूर्ण नहीं हुई थी। ये प्रेम के विषय है, रसो वैष्णव स्वयं रस स्वरूप तो भी द्वादश सदस्य के विषय होकर के भी भक्तों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति भावना है, सेवा की भावना है, विशेष करके राधिका जी कृष्ण के प्रति प्रणय करता है। विशेष मत याचिका है पागल हो जाती है, विद्वान मात हो जाता है और कृष्ण की जो माधुरियां हैं विशेष करके देव माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी कृष्ण का है, वो सर्वोत्तम रूप में श्रीमती राधिका की आस्वादन करती है। हम लोग गोविंद जी का दर्शन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि चित्त ग्रहित होकर के मुक्त हो जाए, ये सब चीजें नहीं है। ब्रज में भी बहुत तरह के भक्त थे, नंद बाबा के सोलह गाड़ी কৃষ্ণের প্রতি প্রেম তো থাক, কিন্তু রাধিকা কে দেখবেন যে মহাভাব মোদান মোহন আর মাদক যে ভাব থাক যে রাধিকা স্পেশালি হ্যাঁ ও কৃষ্ণের দিকে এই কৃষ্ণ অনুভব নেই করতে मैं राधिका से मुझे करके आनंद में विभोर हो जाता हूं, कुछ तुमको ठीक नहीं होता। मैं कमाल को देख करके जैसे या पतंग पकाने की जगह राधा की समझ करके उस आदि में नहीं करता हूं, राधा की तमाशा में से देख करके ही प्रेम में तन्य होकर के विभूत हो जाते हैं, दिल को निवास हो जाता है और उस वृक्ष को देख करके ही कृष्ण समझ करके आलिंगन करती है, उसे बोलती है, हंसती है, जिससे श्रृंगार करती है, कृष्ण की अनुपस्थिति में नहीं करती। कृष्ण देखा है तो अद्भुत बात इनके अंदर कुछ है, वो क्या है, क्या कौन सा भाव इसलिए और उन्हें देख करके कृष्ण को कैसा आनंद होता है जो कृष्ण इस चीज को नहीं मिलता। राधा जी को देख करके ब्रजवासियों को देख करके कृष्ण को क्या आनंद होता है ये अनुभूति है, किंतु राधिका जी के हृदय में कृष्ण को देख करके कौन कौन सा भाव होता है, जिस कृष्ण निमग्न होता है, मूर्छित हो जाती है और मुख्य अवस्था में दिव्योन्माद में हंसने लगती है, ये सब भाव कैसे होता है नहीं। इसलिए राधा जी का भाव कौन सा भाव वे मोदन माधन अंत में माधन भाव देकर चोरी कर और राधिका का बहुत प्रण लेकर के सचिनंदन गौर भरी के रूप में जब वो ब्रज में आए किसी के भाव से वो एकदम मुक्त हो तब पश्चात उन्होंने सनातन गोस्वामी उन गोस्वामी को ब्रज में भेजा, यहाँ के गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन लुप्त हो गए हैं, वैष्णव आचार विचार भी लुप्त हो रहा है, कृष्ण की एकांत की भक्ति और विशेष करके राधा जी की एकांत की भक्ति जिसकी भक्ति कृष्ण स्वयं करते हैं, गोविंद जी की जगत के आराध्य हैं, किंतु इस गोविंद देव की भी कोई आराधना करते हैं किसी की वो है श्रीमती राधिका, इसलिए उनका नाम है राधिका, कृष्ण राधिका कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए उतना तुमको भैया ब्रज का कितना लुप्त तृप्त है इसे उत्थान गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर का इत्यादि जो विघ्न है उनका पुनः प्रकाश किया है, भक्ति के ग्रंथ नहीं है इसका भी प्रकाश किया है, विशेष करके श्रीमद् भागवत ये जो ग्रंथ है अमर पुराण है वैष्णवानंद इसकी मुंडी की भी व्याख्या होने लगी है, त्रिपुण गधारी काली दुर्गा इत्यादि को भी कृष्ण के समकक्ष में गए आते जो लोग हैं उनके आराध्य कृष्ण गोविंद जी नहीं है, उनके आराध्य तो चामुंडा देवी शंकर गणेश इत्यादि है, वो भागवत को व्याख्या करने लगे हैं और व्याख्या के द्वारा काली और उनकी सबकी उपासना को श्रेष्ठ बतलाते हैं और मुक्ति को सबसे बड़े बातें बतलाते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत की कोई वैष्णव पर व्याख्या है, इसको पुष्टि करने के लिए कुछ ग्रंथ बने आए आप रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए और अपने कार्य को उन्होंने किया, सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी का प्रारंभ बड़ी लंबी कथा है, मधु पंडित जी ने वृंदावन में गोपीनाथ जी को प्रकट रूप गोस्वामी ने देखा तब तो प्रकट हुए, गोविंद जी तो प्रकट नहीं हुए, गोविंद जी की कहां है, इसलिए चिंता सेवा कुंज में जहां वर्तमान में आजकल राधा दामोदर जी का शिव ग्रह है मंदिर है सेवा गोस्वामी जी का चौबीसों घंटा आराधना करते थे, भक्ति स्वामी सिंधुमणि इत्यादि ग्रंथों का भी जड़ करके प्रकाशन करते थे और जी गोस्वामी उसका संस्कार करते थे, सनातन गोस्वामी वहां आते थे, सब गोस्वामी लोग वहीं पर आते थे, वहीं पर भागवत की कथा होती और वहीं पर सबकी उसकी गोधन होती थी। रूप गोस्वामी देखा ये हमारे गुरु की कहानी बैठ व्यापक हो गए। प्रतिदिन प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन की परिक्रमा लगा, परिक्रमा करके और रोते रहे हमारे गुरु की कहानी। एक दिन की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ संघार के समय में जब परिक्रमा कर रहे थे उनको कोई भ्रम बढ़ते चित्र से बोला आप इस प्रकार से कुछ विमस्त होकर दुखी होकर के कुछ चिंता करते हुए जा रहे हैं, उनको ये जा रहे हैं कि आप आपने कुछ बताओ तो ये बतलाना क्या बताओ इनसे ये क्या करें ताकि मुझे बताओ कुछ मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। उन्होंने कहा यहाँ पर मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी प्रकट हो, किंतु मैं खोज रहा हूं ये जरूर गोविंद जी भी यहीं पर रही है किंतु कहाँ है मुझे पता नहीं। अच्छा एक बात करो, गोविंद जी की परिक्रमा पृथ्वी वृंदावन की परिक्रमा करते सत्र करते एक स्थान आया जिसको कहते हैं गोमा टीला, गो माता का टीला उनकी भूमि, बहुत ऊंची भूमि है। वहीं पर तुम देखना एक काम है गैया है और वहां पर वो खड़ी हो जाएगी और उसके चारों थनों से दूध निकलेगा और वो दूध एक चित्र में जाएगा और उस चित्र में वो पूरा दूध चला जाएगा जब तो वहां से गैया हट जाएगी। तो मुझसे जगह में कहना है यही गोविंद जी है और उस जगह को खूब सावधानी के साथ में ग्रामवासियों को बुला करके जमीन को वहां से खुदवाना खूब सावधानी में कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, गोविंद जी की जरूरत उसको मिले। और ये कर सके जब गोविंद जी की उन्होंने रूप गोस्वामी उनके साथ देखा तो काम करते हैं वो है ओ ये स्वयं गोविंद जी और कोई दूसरा है और रोने लगे और उस स्थान पर पधारे, पधार करके देखा कि 12 बजे दोपहर जो 12 बजे दोपहर में एक गली आसाम भेज बड़ी सुंदर अद्भुत रूप वाली खड़ी हो गई और उसके स्थान से दूध मोटी खाद निकलने लगा और एक चित्र में जाने लगा। 10-15 मिनट तक वहां पर गई जा रही और जब उनका दुख समाप्त हो गया तो वहां से गुजर गए। रूप गोस्वामी बड़े आनंदित हुए और वहां के प्रतिभागी जो लोग थे उनको बुलाया, बुलाया यहां पर गोविंद जी हैं इसको बड़ी सावधानी से निकालना है। उन लोगों ने बड़ी सावधानी के साथ में धीरे 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 मछली उठाई, जब तीर आया देखा आश्चर्यचकित हो गए, धीरे धीरे और मछली उठाई, गोविंद जी वहीं पर बैठे हुए किसी जी के रूप में आए, गोविंद जी कुछ अब तो उनका अभिषेक हुआ बड़े खास से वहां पर जितने भी कम थे वहां पर बस तीन समय ले मथुरा से लोग हजारों लोग होंगे यहां तक यहां के राजा थे ये वहां पर जो आपस के समय में जो मान सिंह थे अमेर के राजा वो भी पहुंचे और उन्होंने बहुत कही भी और पंचांग के मुताबिक कराया। रूप गोस्वामी ने संयुक्त शास्त्र के अनुसार में उनका अभिषेक कराया और हजारों ब्राह्मणों को लाखों लोगों को वहां पर सदाप्त चलने लग गया, बहुत अन्न भूलता लग गया। इसके बाद में गोविंद जी प्रकट हुए, यहाँ के महाराज उस अभिषेक में थे, उन्होंने कराया था, उन्होंने कहा कि क्या एक मंदिर होने थे तो यहीं के महाराज जी ने रूप गोस्वामी के आदेश दिया कि आपका आदेश हो तो गोविंद जी के लायक सुंदर एक मंदिर बने। उन्होंने आदेश दे दिया ये बनाओ, 2-3 वर्षों में 5 वर्षों में महाराज जी ने मंदिर बनाया था, तबला बहुत ऊंचा और अद्भुत राजस्थानी शैली प्रकृति बनी, लाल पत्थर राजस्थान से गए और ऐसी में नक्काशी अर्थ को भारतवर्ष में इतना सुंदर लगता कि शायद चित्र विचित्र रूप में कहीं नहीं। कुछ समय के बाद में महाराज ने वहां पर नाथू जी की सेवा के लिए गरीबों की गौशाला के लिए 150 बीघा जमीन भी उन्होंने दिया और यहाँ की पूजा सुंदर से चल सके इसके लिए सारी व्यवस्था महाराज जी ने की। रूप गोस्वामी कुछ समय के बाद में वो प्रकट हो गए 150 वर्ष के करीब करीब बीत गया। इसके बाद में औरंगजेब का जमाना महापुरम था काल जन को भी हराने वाला बुद्ध वरिष्ठ पत्थर की मूर्तियों की कोई जरूरत नहीं है भगवान ने इसको बोलो और मंदिरों को मस्जिद बनाओ। विशेष करके रूप गोस्वामी और हमारे गौरव वैष्णव संप्रदाय से जो संबंधित मंदिर थे जिनका ये महाराज सवाई यहाँ के राजा ये सहायता कर रहे थे इन्होंने भी कई मंदिर बनाया है। विशेष करके मथुरा में और केशव में जयपुर में वहाँ गोवर्धन में रामगढ़ में और सब मंदिर जितने इनके बनाए गए हैं इन सब मंदिरों को तोड़ो और मूर्तियों को तोड़ो। जब आपने किया वो 1669 ईस्वी में 144 वर्ष के बाद में ही पूछा और एक कार्य का माना है। आते ही महाराज जी को पता लगाए यहाँ के मानसी को और उन्होंने उन सब मूर्तियों को लेकर के गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर राधा
माधव
और जितने भी हमारे जो चाहियों के ग्रंथ किए थे वो सबको रथ में चढ़ा करके अलग अलग बहुत जल्दी से मथुरा कुमार वृंदावन से परिमंडल से हटाया लेकर के पहला पड़ाव उनका पड़ा राधा कुंभ श्याम कुंड राधा कुंभ श्याम कुंड इसलिए वहां पर गोविंद गोपीनाथ जी के अभी भी मंदिर है जहां पर शिक्षकों दिख रहे हैं। वहां से भी चले दूसरा पाप पड़ा काम्यवन में। काम्यवन में 1670 से लेकर के 1714 तक काम्यवन में ही रहे अभी भी वहां पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के मंदिर अभी काम्यवन में वहां पर रहे 44 वर्ष एक दो वर्ष नहीं किंतु वहां पर भी औरंगजेब की कुछ दृष्टि जब पड़ने लगी तो वहां से आमेर में ले आए तीनों विग्रहों को। उनमें से गोवर्धन को जो धारण करने वाले थे ओ
श्रीनाथ जी गोपाल
गोपाल जी को वहां पर पहुंचा दिया
उदयपुर
वहां पर और गोविंद गोपीनाथ मदनों को आमेर में रखा। उनकी राजधानी पहले आमेर में ही थी फिर उसके बाद में ये नया जयपुर का एक नक्शा बना प्लान बना उसके अनुसार में जब बनने लगा तब तक वहां से जब ये बन करके तैयार हो गया यहाँ पर तो यहाँ रह करके भी जैन बार आज में कहीं महाराज किसी किसी जगह रहते हैं और ये सबका जयपुर का निर्माण हो रहा मंदिर का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा गोविंद जी ने स्वप्न में आदेश दिया देखो तुम यहाँ मत रहो अपने लिए कुछ दूसरा स्थान बनाओ यहाँ पर मैं रहूंगा। तब उन्होंने अपने स्थान को यहाँ से हटा करके सीधा वहां पर गए चंद्रमा कहते हैं या क्या चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा वहां से प्रतिदिन दर्शन करते थे बिना दर्शन के वे जलपान नहीं करते और इनके गोविंद जी की आरती और सभी कुछ प्रतिदिन में इनके जाते यहां पर पता रहे और सबसे 1935 से लेकर के अब तक यहां पर ये गोविंद जी की राजधान है और गोपीनाथ वहां पर तैयार है। अब क्या हुआ सेवा, जब तक रूप गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे, वो तो विभाव में भी थोड़ा से भाव नहीं सेवा, अर्चन नहीं, अर्चन और सेवा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। अर्चन ये मर्यादा मार्ग है और साधारण साधकों के लिए, साधारण साधकों के लिए बिगड़ की प्रतीक्षा करते हैं कि अर्चन और सेवा जैसे यहाँ पर कितने बार भोग लगता है, कितने बार दर्शन होता है, इसकी सारी व्यवस्था कर ली और पदार्थन करने के शिष्य थे हरिदास। उस समय आज जैसा नहीं चाहते, ये मेरा शिष्य है, वो उसका शिष्य है, वो उसका शिष्य है, वो संप्रदाय है, वो संप्रदाय, ये सब नहीं था। जो कोई भजन करता था वही उन्नत माना जाता, चाहे सन्यासी हो, विभक्त हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, यही फर्क है। यही फर्क जो बड़ा है, किसने की स्थिति थी भजन में आ